दिन भर तारीख 9 जनवरी दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दाश। आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल आज पहुंचा राज्यसभा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,
तो आज तो बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है, तो इतिहास बना रहे हैं तो समर्थन करिए, तो खुल के करिए, फिर लेकिन का क्या बात।
हड़ताल पर क्यों है मुंबई के बेस्ट बसों के कर्मचारी,
2007 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको 7930 इस मास्टर ग्रेड में पूर्व लक्ष्य प्रभाव से उनका फिक्सेशन किया जाए।
दुनिया जहान में आज बात सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति पर।
They are not treated as full citizens or full human beings. दहशत की बुर्का भी है, पासपोर्ट भी नहीं अप्लाई कर सकते, कितनी चीजें हैं।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत में सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन के विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। इस दौरान भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब ये विधेयक लेकर क्यों नहीं आई। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना किसी डाटा के ही जल्दबाजी में ये विधेयक लाया जा रहा है। संसद में चर्चा के दौरान सिब्बल ने कहा,
कोई डेटा आपने कलेक्ट किया प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, कहाँ ओबीसी ज्यादा है, कहाँ दलित ज्यादा है, उसकी परसेंटेज हर प्रदेश में क्या है, क्या करना चाहिए, वो डेटा आपने कलेक्ट किया। मुझे याद है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और पहली बार 1982 में सदन में रखी गई और उसके बाद 1983 में सदन में रखी गई और फिर 1990 में जाकर पास किया गया, मतलब कि उसको भी लगभग 10 साल लगे। यहाँ तो आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। बीते महीने हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे अभी तक नहीं आ सके हैं। ये नतीजे रविवार को आने थे लेकिन देरी के कारण विपक्षी दल चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। नतीजों में देरी की वजह से आम लोगों में सुरक्षा चिंताएं भी पैदा हो रही हैं। राजधानी किन्शासा के एक आम नागरिक ने खून खराबे को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा, फेलिक्स और कबीला को लेकर जो ये अफवाहें चल रही हैं, इनके बीच हमें शांति चाहिए। अगर फेलिक्स फायलू चुनाव जीत गए हैं तो उन्हें सभ्य तरीके से सत्ता हस्तांतरित करने की तैयारियां होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि जब वो नतीजा घोषित करें तो लोगों की जान जाए और सड़कों पर खून बहे, क्योंकि हम अब इससे थक गए हैं और हम बस शांतिपूर्ण घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावाद जरीफ ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से दिल्ली में कई मुद्दों पर बात की है। हाल ही में अमेरिका प्रतिबंधों के बाद भारत को तेल बिक्री के भुगतान पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की है। भारत ईरान से तेल खरीदते रहना चाहता है। ईरान भारत को दाम चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देता है और तेल पहुंचाने का कोई भाड़ा भी नहीं लेता है। भारत को ईरान से तेल खरीदना जारी रखने के लिए अस्थायी राहत मिली हुई है लेकिन अमरीकी प्रतिबंधों के तहत भारत ईरान को भुगतान डॉलर में नहीं कर सकता है। भारत और ईरान भारतीय रुपये में व्यापार करने की व्यवस्था करने पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल के पूर्व ऊर्जा मंत्री ने अभियोजकों के साथ हुए समझौते में ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप स्वीकार किए हैं। न्याय मंत्रालय के मुताबिक अभियुक्त गोनेन सेगेव ने जासूसी के गंभीर आरोप स्वीकार किए हैं और उन्हें 11 साल की सजा दी जाएगी। 90 के दशक में मंत्री रहे सेगेव के वकीलों का कहना है कि समझौते के तहत अभियोजकों ने राष्ट्रद्रोह के गंभीर आरोप को उनसे हटा लिया है। सेगेव पर आरोप है कि उन्होंने 2012 से लेकर बीते साल मई तक इसराइल के अधिकारियों, सुरक्षा ठिकानों और ऊर्जा ठिकानों के बारे में ईरान को जानकारी दी है। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिनबेत का कहना है कि वो आगामी आम चुनावों को प्रभावित करने के किसी भी बाहरी प्रयास को नाकाम करने और लोकतांत्रिक और स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया की गारंटी देने में सक्षम है। इसराइल में इसी साल अप्रैल में चुनाव होने हैं। हाल ही में आई रिपोर्टों के मुताबिक एक समूह के साथ बातचीत में शिनबेत के प्रमुख नदाव आर्गमान ने कहा था कि एक विदेशी ताकत चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इन रिपोर्टों के बाद ही शिनबेत की ओर से यह दुर्लभ बयान जारी किया गया है। बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है लेकिन प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आलोचक उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नजदीकी का हवाला दे रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा नमस्कार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा पहुंचा। भाजपा ने इस पर चर्चा के लिए एक दिन बढ़ाने की गुजारिश की, जिसे लेकर हंगामा हुआ और सदन को पहले स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे के बाद बिल पर जो बहस शुरू हुई वो अब तक चल रही है। आज दिन भर राज्यसभा में क्या कुछ हुआ बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी। पंकज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं, 10% आरक्षण बिल पास हो रहा है या फेल?
देखिए, अभी तक तो चर्चा चल रही है मानसी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आज ये विधेयक पेश किया गया, लेकिन विधेयक पेश करने से पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा का सत्र बढ़ाए जाने के फैसले का विरोध किया और काफ़ी शोर शराबा हुआ। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। 2 बजे इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। भाजपा के नेता प्रभात झा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से हो रही मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, लेकिन इसे पूरा नरेंद्र मोदी नहीं किया है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने विधेयक का समर्थन तो किया, लेकिन कई सवाल भी उठाए। हालांकि बीच बीच में बीजेपी नेताओं की ओर से टीका टिप्पणी भी होती रही।
4 साल 7 महीने के उसके बाद आप लाए हैं आखिरी सत्र के अंदर। वास्तविकता यह है, दिस हैज बीन ब्रॉट बाय अ गवर्नमेंट व्हिच इज ऑलरेडी इन अ डिपार्चर लाउंज। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अब लोगों को क्या आप बनाएंगे कि हम आपको दे रहे हैं एक और सपना, दे दिया सबको, दे दिया। हर आदमी सोचेगा मेरे बेटे बेटे बेटी को अब रोजगार का मोदी जी ने प्रबंध कर दिया। पर प्रश्न एक, नौकरियां हैं कितनी?
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी अपने भाषण की शुरुआत समर्थन से की, लेकिन फिर सरकार को घेर लिया।
आज मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस देश के ओबीसी को 54% आरक्षण दिया जाए उनकी आबादी के हिसाब से, क्योंकि अब जब आपने 50% के बैरियर को तोड़ ही दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तब अब दीजिए, अब कोई संकट ही नहीं, अब क्या दिक्कत है आपके सामने।
राष्ट्रीय जनता दल ने खुलकर इस विधेयक का विरोध किया। पार्टी के नेता मनोज झा ने इस विधेयक को ऐसा झुंझुना करार दिया जो बजता ही नहीं है।
इतनी समझ का अभाव कैसे हो सकता है? बड़े विद्वान मंत्री हैं सर इस मंत्रिमंडल में, शायद उनकी सुनी नहीं जाती है या वो बोल नहीं पाते हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशनल अनटेनेबिलिटी एंड लीगल इनटेनेबिलिटी दोनों के आधार पर इसको खारिज किया जाए, लेकिन ये पूरी की पूरी सरकार व्हाट्सएप पे चल रही है सर।
AIADMK ने कहा है कि इस विधेयक को लाना ही असंवैधानिक है। पार्टी के नेता ए नवनीत कृष्णन ने कहा,
द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टू फेवर एनी सोशली एडवांस्ड कम्युनिटी दो दे मे बी पुअर, but nobody is preventing them from competing, so my humble submission would be this parliament।
इसके बाद पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जिस तरीके से बिल लाया गया है वो बिल्कुल गलत है, जबकि बीजेपी ने बिल का समर्थन तो किया लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाए। आज पीएम नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र के शोलापुर में उनकी रैली में आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। मोदी ने लोकसभा में बिल पास किए जाने का जिक्र किया।
देर रात तक चर्चा हुई, करीब करीब सर्वसहमति से कुछ लोग हैं जिन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कल लोकसभा ने किया।
दूसरी ओर राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल का बचाव किया और इसके पक्ष में कई तर्क पेश किए। उन्होंने कहा कि आज बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है।
अब आपको इसके बाद ये बंधन देना पड़ेगा कि उनके लिए 10% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। उसके मानक क्या होंगे ये मानक राज्य सरकार तय करेगी। तो ये एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करके कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो आज तो बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है, तो इतिहास बना रहे हैं तो समर्थन करिए, तो खुल के करिए, फिर लेकिन का क्या बात।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के भाषण के दौरान खूब टोका टाकी हुई, शोर शराबा हुआ। कपिल सिब्बल ने सरकार की जमकर आलोचना की और जाते जाते कुछ ऐसे नसीहत भी दे डाली।
खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है, अब भी बदल जा, मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला, मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का जुमला, शहन शायगी आदत भुला के, नफरत के बीच दफना के, इंसान बन के दिखा दे।
तो मानसी, इस तरह अभी भी मैं जो देख रहा हूँ राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश मिश्रा बोल रहे हैं, हालांकि बीएसपी नेता मायावती ने कल ही समर्थन का ऐलान कर दिया था इस विधेयक पर। तो अब वोटिंग होगी और देखिए वोटिंग में सरकार जीतती है या नहीं।
जी, उम्मीद यही की जा रही है कि अब से आधे घंटे या एक घंटे बाद इस पर वोटिंग हो जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए धन्यवाद पंकज प्रियदर्शी। लेकिन इस बिल का क्या असर पड़ सकता है, क्या आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये अहम साबित होगा, इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणिस से।
अगर देखा जाए तो इसका असर इमीडिएटली मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हम लोगों को महसूस नहीं होगा। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, सड़क पर लोग उतर आए थे और जिस तरह की एजिटेशन वगैरह हम लोगों ने देखे थे, वो मेरे ख्याल से इस बार नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि किसी से कुछ लेकर किसी और को कुछ दिया जा रहा है। सवाल ये है कि इस संशोधन से हम लोगों को आगे किस तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी। पहली बात तो कितनी राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी। सर्वविदित है कि केंद्रीय सर्विसेज में नौकरियां उतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नौकरियां हैं सिविल सर्विसेज में जो कि राज्यों के तहत आती हैं, वहां पर आरक्षण किस तरह से होगा। दूसरी बात, इसमें प्रावधान है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का, एडेड और अनएडेड नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में भी। तो उदाहरण के तौर पर यदि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस का स्ट्रक्चर देखें, तो जो लोग 8 लाख रुपए यानी 65,000 रुपए महीना कमाते हो, क्या वो वाकई 1.5 या 2 लाख रुपए महीना फीस दे सकेगा, और इसके लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि ये अगली फिर मुहिम शुरू होगी कि हम को रिजर्वेशन तो मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं है तो हम रिजर्वेशन का लाभ भी नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल से भाजपा ने हाथ जोड़कर ये माना है कि यदि उन्होंने चुनाव में पराजय पाई तो उसका एक कारण ये था कि समाज के एक वर्ग ने अपने आप को उपेक्षित पाया और इस वर्ग का ध्यान इस कदम से भाजपा ने ले लिया है।
आपने जिक्र किया चुनावों का और विपक्षी पार्टियों का आरोप ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने ये कदम उठाया है, कितना सही है ये आरोप?
निश्चित रूप से सही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यदि विपक्ष होता है तो विपक्ष भी यही करता। सवाल ये है कि ये कदम भाजपा के लिए कितना लाभदायक साबित होगा चुनाव में, और फिर चुनाव में हम और आप जानते हैं कि बहुत सारे इनपुट्स जाते हैं, जब कोई बटन दबाने की सोचता है तो उस बटन दबाने से पहले वो कई चीजों के बारे में, कई चीजों का आकलन करता है। सिर्फ ये नहीं कि हमें आरक्षण मिला कि नहीं, हमारे सामने एक साइकोलॉजिकल बैरियर था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि इंदिरा सानी का केस था। जब जाट आरक्षण मांग रहे थे तो सवाल ये था कि उनको कैसे दिया जाए, जब तक सैनियों का आरक्षण ले लिया नहीं जाए, क्योंकि 50% की लिमिट हम रीच नहीं कर सकते हैं। अब जो है साइकोलॉजिकली वो बैरियर टूट गया है, तो अब मराठा कहेंगे अब हमको दीजिए। आगे आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा शायद बन जाए।
जी, लेकिन आर्थिक आधार को आधार बनाना कितना सही है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि आर्थिक आधार आधार नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसके चलते ऐसा कहा है। अब जब आप संविधान को ही बदल रहे हैं, उसी का संशोधन कर रहे हैं, तो फिर मतलब बड़ा कौन है, संविधान है या सुप्रीम कोर्ट है?
आरक्षण बिल का प्रभाव क्या हो सकता है, विश्लेषण कर रही थी अदिति फडणिस।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
जम्मू कश्मीर से साल 2009 में सिविल सेवा परीक्षा टॉप करने वाले आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने कश्मीर में हिंसा के कारण हो रही हत्याओं के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। शाह फैसल शिक्षा विभाग में श्रीनगर में प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे और कश्मीर हिंसा के दौरान मीडिया के रवैये से नाराज थे। इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के हाथ मुठभेड़ के बाद भी शाह फैसल ने फेसबुक पर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। शाह फैसल के इस्तीफे के बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो राजनीति में कदम रख सकते हैं।
आई थिंक पिछले साल दो साल से जिस तरह के हालात हमने मुल्क में देखे, रियासत जम्मू कश्मीर में देखे, कश्मीर में जिस तरह से کلنگز کا ایک جو سلسلہ چلا، اسی طرح سے انڈین مسلمز کی جو ہم نے مارجنلائزیشن دیکھی، رونگٹے کھڑے کرنے والے ویڈیوز ہم نے دیکھے جس میں گورک شخص، وجیلانٹزم کا ہم نے جو ایک نیا سلسلہ دیکھا، یہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا، ان پہ ریئیکٹ نہ کرنا شاید میرے لیے بہت ہی انٹینیبل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے شاید ابھی وہ وقت آ چکا تھا کہ اس پہ کھل کے بولنے کی ضرورت تھی، اور وہ شاید نوکری چھوڑ کے ہی کیا جا سکتا تھا۔
شاہ فیصل کا پورا ساکشاتکار ہم آپ کو سنوائیں گے کل سویرے کے نمسکار بھارت کاریکرم میں۔ اور اب چلتے ہیں ممبئی، جہاں کی لوکل ٹرین اور وہاں کی لال رنگ کی بیسٹ بسیں وہاں کی لائف لائن مانی جاتی ہیں، اور اگر بیسٹ بسوں کی ہی ہڑتال ہو جائے تو وہاں یاتایات لگ بھگ ٹھپسا ہو جاتا ہے۔ کل سے ممبئی کے بیسٹ بسوں کے ہزاروں کرمچاری انشچتکالین ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ کن باتوں کو لے کر ناراض ہیں بیسٹ کرمچاری اور ان کی کیا ہے مانگیں، یہ جاننے کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہمارے سہیوگی میوریش کونور سے، جو فی الحال ممبئی میں موجود ہیں۔
جی، ان کی مانگیں ہیں زیادہ تر سیلری کے بارے میں، جس کے اوپر بہت دنوں سے ڈیلیبریشنز ہو رہے تھے اور وہ ان کو نہیں ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ جو کسی کو نوکری مل جاتی ہے، رشتہ دار کو یا گھر میں کسی کو، وہ بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ ہیں، بیس میں بہت دنوں سے وہ بند ہیں اور وہ پھر سے شروع کر دیا جائے۔ قریب 33,000 سے زیادہ بیس کے کرمچاری ہیں، 3,000 بسیز جو ہے وہ آف روڈ ہو گئی ہے اور بہت دقتیں آ رہی ہیں۔ یہ مانگے اور یہ چرچا کہاں تک آئی، کچھ دن پہلے جو اس پورے اسٹرائک کو جو لیڈ کر رہے ہیں یونین لیڈر ہیں ششانک راؤ، ان سے ہم نے بات کی۔
ہماری تین پرمکھ مانگے ہیں۔ پہلی کہ 2007 کے بعد جو کرمچاری بھرتی ہوئے ہیں ان کو 7930 اس ماسٹر گریڈ میں پورو لکش پرواہ سے ان کا فکسیشن کیا جائے۔ دوسری، بی ایس ٹی کا بجٹ یہ مہانگر پالیکے کے اے بجٹ میں مرچ کیا جائے۔ تیسری، کہ جو ہمارا پچھلا ویتن قرار 31 مارچ 2016 کو ختم ہو چکا ہے، نئے ویتن قرار کا ڈرافٹ ہم نے مئی 2016 کو دیا ہے، اس پر ترنت چرچا شروع کرے اور نرنے پر آئے۔
جو بیسٹ بسز کے سٹاپس ہیں وہاں پہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، قریب 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ سویدھا کا استعمال کرتے ہیں ہر روز، تو وہ سب اسٹیشن پہ ہیں، ریلوے کو ابھی پسند کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ بھی بھیڑ زیادہ ہے۔ سب لوگ تو ٹیکسی سے جا نہیں پاتے یا پھر فلیٹ ٹیکسیز کر نہیں پاتے، تو ان کو بہت دقتیں آ رہی ہیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس اور جو عام آدمی ہیں جو نوکری کے جگہ پہ جانے کے لیے بسز کا استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں جا پا رہے ہیں، تو وہ دقت ہمیں راستے پہ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ جو ہے مہاراشٹر کے باقی جگہ پہ بسز مہیا کراتے ہیں، انہوں نے اپنی کچھ بسز جو ہیں وہ فی الحال مہیا کرائی ہیں، خاص کر اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ بیسٹ بسز کے نمبر کے سامنے ان کا نمبر تو بہت چھوٹا ہے۔
کیا سرکار کی طرف سے بات چیت کی کوئی پیشکش یا سمسیا کا حل نکالنے کی کوشش ہوئی ہے؟
جب ہم نے یونین لیڈر سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک کچھ بھی پازیٹو جسے کہا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ وہ ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں، کل ایک دور ہوا تھا، لیکن یونین لیڈرز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے لیے پازیٹو حل نہیں نکلتا تو تب تک وہ انڈیفینٹ اسٹرائک جو ہے چلتا رہے گا۔
جانکاری دے رہے تھے میوریش کونور۔ اور اب وقت ہے سپتاہ کی خاص پیشکش دنیا جہان کا۔ سعودی عرب میں مہیلاؤں کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب کی کوئی مہیلا جب ان پابندیوں کی دیوار کے پار نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو پوری دنیا میں خبر بنتی ہے اور عورتوں کے ادھیکار کو لے کر چرچا شروع ہو جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے مہیلاؤں کو زیادہ ادھیکار دے کر ان کے پرتی اداروادی رویہ سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن زمین پر استھتی کیا ہے؟ اس بار دنیا جہان میں واتسلیہ رائے نے یہی پڑتال کی۔
دنیا جہان۔
There's a very huge misconception of Saudi Arabia and Saudi women in particular. We are guided by men or driven by men, but this is not true.
یہ پرتکریا قریب 14 مہینے پرانی ہے۔ مہینہ تھا نومبر اور سال تھا 2017۔ مدھیہ پورو کے گلوبل فورم میں شرکت کر رہی سعودی عرب کی ایک یوتی نے تب بی بی سی سے کہا تھا، سعودی عرب خاص کر وہاں کی مہیلاؤں کے بارے میں کئی غلط دھارنائیں ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مانا جاتا ہے کہ پرش ہمیں چلاتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلے سال یعنی 2018 میں سعودی سرکار نے مہیلاؤں کے حق میں کئی ایسے فیصلے کیے جن سے لگا کہ یہ سماج مہیلاؤں کو بندھن میں جکڑے رہنے کو لے کر بنی اپنی چھوی توڑنے کو لے کر گمبھیر ہے۔ اسے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ بتایا گیا۔ کئی وشلیشکوں کی رائے ہے کہ سعودی عرب کی اصل سطح پرنس سلمان کے ہی ہاتھ ہے اور وہ سعودی شاشن کو ترقی پسند اور ادار وادی چہرہ دینا چاہتے ہیں۔ सऊदी महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो साल 2015 में ही मिल गया था, 2018 में उनके हाथ ड्राइविंग सीट भी आ गई, उन्हें सिनेमा और स्टेडियम में जाकर फुटबॉल मैच देखने की इजाजत भी मिल गई। साल बदला और 2019 के पहले रविवार से नियम लागू हुआ कि सऊदी अरब में कोई पुरुष अपनी पत्नी को जानकारी दिए बिना तलाक नहीं ले सकेगा, यानी आगे से ऐसे सीक्रेट डिवोर्स नहीं होंगे जिनके बारे में संबंधित महिला को जानकारी न हो। लेकिन बदलते समाज की छवि को उस वक्त धक्का लगा जब थाईलैंड के बैंकॉक में एक सऊदी युवती सामने आई। रहाफ मोहम्मद अल कुनून नाम की 18 बरस की इस युवती ने बताया कि वो अपने घर से भागकर आई हैं और वापस नहीं जाना चाहती, और अचानक बहस का रुख सऊदी अरब के गार्डियनशिप सिस्टम की ओर मुड़ गया। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद इसे सऊदी महिलाओं की राह की सबसे बड़ी रुकावट बताते हैं।
जो बराए नाम तब्दीलियां हो रही हैं, मैं इनको सीरियसली नहीं ले पाता, ये एक दिखावा है। बुनियादी तौर से वहाँ पे इस्लाम के नाम पे महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां हैं। जो सबसे मूल बात है वो ये है गार्डियनशिप सिस्टम, यानी कि वुमन कभी एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनालिटी बनी नहीं सकती, उसको हर वक्त एक मेल गार्डियन की जरूरत होती है। जो भी वो चाहे करना चाहे वो गार्डियनशिप सिस्टम उस वहां से अभी तक नहीं उठा है।
सऊदी कानून के मुताबिक कोई भी महिला अपने पुरुष अभिभावक की इजाजत के बिना जिंदगी के कई काम नहीं कर सकती। पासपोर्ट बनवाने, विदेश यात्रा करने और शादी करने के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक में अकाउंट खोलने और कोई बिजनेस शुरू करने के लिए भी उन्हें अनुमति लेनी जरूरी है। अभिभावक पिता और पति के अलावा भाई या बेटे भी हो सकते हैं। कुछ बरस पहले सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर ने सऊदी अरब का दौरा किया था और वहाँ की महिलाओं के जीवन को करीब से देखा था।
दे आर नॉट ट्रीटेड एज फुल सिटीजंस और फुल ह्यूमन बीइंग। दहशत की बुरका भी है, पासपोर्ट भी नहीं अप्लाई कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कितनी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते।
तलमीज अहमद बताते हैं कि सऊदी महिलाओं पर ये तमाम पाबंदियां इस्लामी कानून के नाम पर थोपी गई हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि हकीकत में इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।
सऊदी अरब का एक बहुत पुराना वहाँ एक किस्सा है कि उन्होंने अपने आप को एक वहाबी देश बताया है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि वहाबिया का मतलब क्या है। वहाबिया तो एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन है। ये सब जो हम सुन रहे हैं ये सब तो इस्लाम के नाम पे बिल्कुल सोशल डिसेबिलिटीज और सोशल रिस्ट्रेंट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं।
सऊदी अरब करीब 19 बरस पहले यानी साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र के महाधिवेशन में सहमति दे चुका है कि वो अपने देश में महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करेगा, लेकिन अब भी वहाँ महिलाएं पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक पाबंदियों के घेरे में रहती हैं। लिंग के आधार पर होने वाली असमानता में सिर्फ यमन और सीरिया जैसे देश ही उससे आगे हैं। मधु किश्वर कहती हैं कि इन पाबंदियों के बाद भी सऊदी अरब की महिलाएं तरक्की के पैमाने पर किसी भी जमात से पीछे नहीं है।
ये कोई अगर सोचे कि सऊदी महिलाएं बिल्कुल दबी कुचली हैं तो ये बहुत गलत फहमी होगी। हमें ज्यादातर औरतों से मिलने ही ले जाया जाता था, जैसे विमेन जो डॉक्टर्स हैं, विमेन प्रोफेसर्स, विमेन बिजनेस चेंबर्स, वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, वेरी कॉन्फिडेंट औरतें, इनसे ही मिलाया जाता। वो नजारा मंजर याद करती हूँ कि हम मीटिंग में मिलते थे, सब आती तो बुरके और हिजाब के साथ थी, फिर हमारे साथ बैठ के जैसे ही बुरके निकालती थी, अरे बाबा रे, इतने फैशनेबल वेस्टर्न क्लोथ कि हम बहुत सुन के रह जाते थे। ये किसी को भी अगर लगे कि बुरके और हिजाब के पीछे एक ब्रेनलेस पपेट है, ये गलत फहमी वहाँ जाके दूर हो गई।
सऊदी अरब में साल 1979 में रूढ़ीवादी ताकतों का उभार हुआ और गार्डियनशिप सिस्टम के नियम सख्ती से लागू हुए, लेकिन इसके बाद भी वहां 15 साल तक की लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। स्नातक की उपाधि लेने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मधु किश्वर कहती हैं कि संपन्न परिवारों की महिलाएं तो शिक्षा हासिल करने के लिए पश्चिमी देशों का भी रुख करती हैं।
इलीट फैमिलीज, ये नहीं उन्होंने किया ना कि अपने घर की औरतों को सिर्फ जनाना में बंद कर दिया। पढ़ी लिखी तो है, अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ रहे हैं या ऑक्सफर्ड में पढ़ रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि वहाँ के तौर तरीके देंगे। तो एक बहुत स्प्लिट पर्सनालिटी मुझे दिखी, और ज्यादा दिन वो चुप बैठने वाली नहीं, ये मुझे अंदेशा वो 10 साल पहले ही हो गया था।
सऊदी अरब में अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं की भी कमी नहीं है। साल 2016 में महिला संगठनों ने शाही कोर्ट में गार्डियनशिप सिस्टम के खिलाफ एक याचिका दी। इस पर 14,000 महिलाओं ने दस्तखत किए थे, लेकिन ऐसी कोशिशों को सरकार के स्तर पर ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है।
दहशत तो है, क्योंकि आप कह नहीं सकते कब क्रैकडाउन हो जाए। छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। एक मॉल में हम गए तो एक फ्लोर जो मॉल का था वो केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित था, तो मैं तो चली गई, महिला थी। और वहाँ क्या मैंने देखा, जिस किस्म की जो फैशनेबल अंडरगार्मेंट्स और नाइटीज, इतनी सेक्सी तो मैंने पेरिस में भी कभी नहीं देखी होंगी। तो मेरा मन किया मैंने तुरंत फोटो खींचनी चाहिए अपने मोबाइल फोन, तो तुरंत दो गार्ड्स आए और मुझे एकदम दबोच लिया। यू आर वेरी क्लोजली वॉच्ड। एक फुसफुसाहट भी रिजीम से छुपी नहीं रहती है।
لازم ان الحاكم العدل والحد السنين او لازم
सऊदी समाज को करीब से देखने वाले कई लोग मानते हैं कि सऊदी अरब में महिलाओं पर पाबंदी लगाकर दूसरे मकसद हासिल करने की कोशिश की जाती है। सरकार सुधार की मांग को खतरे की तरह देखती है। तलमीज अहमद को सुनिए।
सऊदी अरब में जो आजकल डिमांड है वो है रिफॉर्म के डिमांड। अब वहाँ पे फिक्र है रॉयल फैमिली को कि अगर हम रिफॉर्म शुरू कर दें तो ये कहाँ तक जाएगा। फिर लोग डिमांड करेंगे कि रॉयल फैमिली के प्रिविलेजेस क्यों यहाँ हमको बर्दाश्त करने चाहिए। किसी को मालूम नहीं इनकम कितनी होती है और एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है। तो लोग तो डिमांड करेंगे ही कि हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए हुकूमत में। उसको रोकने के लिए ये सब वहाँ पे डिसेबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शन हैं, और महिलाओं को बहुत बड़ी कीमत इसके लिए अदा करनी पड़ रही है।
सिस्टम में सुधार और महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाने वाले संगठनों की कई कार्यकर्ता जेल में हैं, लेकिन विरोध की आवाजें थम नहीं रही। तलमीज अहमद का दावा है कि मौजूदा स्थिति को लंबे वक्त तक कायम रखना संभव नहीं होगा।
वहाँ की लेडीज बहुत ज्यादा अकम्प्लिश्ड हैं, दे आर वर्दी ऑफ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट। आप देखेंगे कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ उनकी अकम्प्लिशमेंट ना हो, लेकिन ये सब जो सोशल कॉन्स्ट्रेंट है उनके ऊपर, उससे उनको दबाया जा रहा है। और मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वहाँ पे बुनियादी तब्दीली आएगी, और उस टाइम आप देखेंगे महिलाएं आगे आएंगी और वो एक नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल सोसाइटी बन जाएगी।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।
3,20,00,000 जनसंख्या वाले सऊदी अरब की करीब आधी आबादी भी ऐसे ही दिन की सुबह देखना चाहती है।
दुनिया जहान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आपके खतों और ईमेल का हमें इंतजार रहेगा। और कार्यक्रम के आखिर में अब सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
भारत में सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन के विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। बीते महीने हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे अभी तक नहीं आ सके हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावाद जरीफ ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से दिल्ली में कई मुद्दों पर बात की है। इसराइल के पूर्व ऊर्जा मंत्री ने अभियोजकों के साथ हुए समझौते में ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप स्वीकार किए हैं। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिनबेत का कहना है कि वो आगामी आम चुनावों को प्रभावित करने के किसी भी बाहरी प्रयास को नाकाम करने और लोकतांत्रिक और स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया की गारंटी देने में सक्षम है। और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था ने उससे सऊदी अरब से अपना परिवार छोड़कर आई युवती को पनाह देने के लिए कहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।